Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
अभी कुछ समय पहले यहाँ आए थे मुरारजी देसाई, तो वो ठहरे हुए थे यहाँ पर अपने ज्ञान विज्ञान भवन में। तो मुझे कहा गया कि आप गीता के बारे में थोड़ा टाइम इनसे बातचीत करना। 10 मिनट का टाइम था। अब 10 मिनट में इतनी सारी गीता की बात, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ, कैसे की जाए। थोड़ा सा समय मुझे मिला, उससे बात हुई, तो मैंने उनको कहा कि गीता तो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, तो आप सोचिए कि भगवान ने अर्जुन को कैसे कहा होगा, तीर कमान उठाओ और मारना शुरू कर दो। तो उसने तो अहिंसा का पाठ पढ़ाया होगा, तो ये तीर कमान या लड़ाई जो है, ये विकारों के विरुद्ध थी, शत्रु वो थे। ये मैंने बताने की उसको कोशिश की कि अगर ये बात मान जाता है तो फिर उससे और आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे कहता है मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने कहा आप तो महात्मा गांधी को मानते हैं और आप तो अहिंसा को भी मानते हैं, गीता को भी मानते हैं। कहता है मानता जरूर हूँ, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था बॉम्बे में, गुजरात और गुजरातियों और मराठों के झगड़े हुए थे और उस टाइम रायट्स हो रही थी, एक दूसरे को मार रहे थे, तो मैं चीफ मिनिस्टर था उस टाइम। मैंने कहा मारो गोली जो झगड़ा करते हैं, रायट्स करते हैं और लोगों को, रास्ते जाने वालों को मर्डर करते हैं, शूट एट साइट, इनको गोली मार दो। तो कहता है उस समय मैंने गीता को हाथ में उठा के अहिंसा का पालन थोड़ी करना था, उस समय यही अहिंसा थी कि जो अहिंसा करने वाले थे उनको मैं मरवा डाली, क्योंकि वो जो अहिंसक लोग थे उनको भी मार रहे थे। अहिंसक को ही हिंसक लोग मार डालेंगे सारी दुनिया में, अगर मैं अहिंसकों को ना मरवाता, ये जस्टिफाई वो करने लगा। कितना लोगों की मैं आपको मिसाल दूं, आप आज के बाद अगर इस बात पर ध्यान दें तो आप ये महसूस करेंगे कि जो लोग दिव्य गुणों को भी मानना चाहते हैं और करते आसुरी गुणों का पालन है, बात दिव्य गुणों की करते हैं, तो कारण क्या है? अगर हम उनको ये समझा दें कि वास्तव में जो आसुरी गुण वो दिव्य गुण समझे बैठे हैं वो दिव्य गुण नहीं है, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और हमारे भाई बहनों में भी कि जो लोग दिव्य गुणों को भी मानना चाहते हैं और करते आसुरी गुणों का पालन है, बात दिव्य गुणों की करते हैं, तो कारण क्या है? अगर हम उनको ये समझा दें कि वास्तव में जो आसुरी गुण वो दिव्य गुण समझे बैठे हैं वो दिव्य गुण नहीं है, तो उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और हमारे भाई बहनों में भी मैंने ऐसा देखा है कि कई दफा वो दिव्य गुण का जो प्रयोग है वो एक दिव्य गुण का दूसरे दिव्य गुण से विरुद्ध कर रहे होते, और वहां पर संघर्ष पैदा होता है, वो समझ में नहीं आता। आपको कई मिसालें इस विषय में दी जा सकती हैं। आमतौर से लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, भाई सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वद, लोग कहते हैं सत्य बोलो, हर एक ने ये उपदेश दिया है, लेकिन साथ साथ कह देते हैं कि अगर कोई गाय जा रही हो, उसके पीछे कसाई जा रहा हो और वो कसाई पूछे जी इधर से कोई गाय जाती तो आपने नहीं देखी, तो हमें कहना चाहिए नहीं जी इधर से तो गई नहीं गाय, क्योंकि हम उसको बचाना चाहते हैं गाय को। तो कहते हैं वैसे तो सच बोलना ठीक है, लेकिन ऐसे मौके पर झूठ बोल देना चाहिए, झूठ उस समय सत्य से भी श्रेष्ठ है। तो देखिए कि वो झूठ को अच्छा समझ रहे हैं तभी तो उसको पालन कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो क्या चाहते हैं कि कसाई उसकी हिंसा कर देगा, उस हिंसा से बचाने के लिए झूठ भी बोल देना ठीक है। तो सत्य भी एक दिव्य गुण है, अहिंसा भी एक दिव्य गुण है, लेकिन वो अहिंसा बनी रहे उसके लिए झूठ बेशक बोल दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि एक दिव्य गुण का घात कर रहे हैं दूसरे दिव्य गुण के लिए है। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं कि दिव्य गुण का पालन किया जाए, लेकिन वो सत्य को समझ नहीं रहे। कई दफा क्या हुआ कि बाबा दिल्ली में आए हुए थे, साकार बाबा, और दिल्ली में राजौरी गार्डन सेंटर पर रहे हुए थे। तो उन्होंने करोल बाग का जो सेंटर है, छोटा सा एक सेंटर था, ये अभी का जो सेंटर है वो तो बहुत बाद में हुआ, तो एक छोटा सा सेंटर था और वहां पर एक व्यक्ति जो है वो CID में काम करता था, कोई सब इंस्पेक्टर के रैंक का था वो। उसकी धर्मपत्नी जो है वो अपने सेंटर पर आती थी, उसको अच्छा लगता था, वो नियम में चलने लगी, पवित्रता का व्रत उसने लिया, और उसका जो पति था वो बिल्कुल और माहौल का और विचारों का था, उनसे संघर्ष चलता था दोनों का, तो वो उसको जाने नहीं देना चाहता था। उसको जब मालूम पड़ा कि बाबा आए हुए हैं, उसने क्या किया, जैसे उसका मन काम करता था उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी कि दादा लेखराज जो हैं वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि पति पत्नी का संबंध विच्छेद करते हैं, और मेरी पत्नी भी वहां उनके पीछे लगी हुई है, और वो एफएस करने का मेरे को डर है इत्यादि इत्यादि जो कई दफा होते हैं एक्स क्लासेस होती हैं, कुछ इल्जाम उन्होंने लगा दिए। अपने पुलिस का आदमी था, पुलिस वाले उसके परिचित थे और उसको रिपोर्ट कर ताकि एक दफा मैं इनको अरेस्ट करूंगा तो कम से कम कहेंगे भाई इसकी पत्नी को तो जो ज्वाइस करने दो, हमारा झंझट पड़ता है, इसको छोड़ो। तो ये उसका टैक्टिक था कि इनको अरेस्ट करो तो ये छोड़ देंगे मेरा पीछा। उसने वो पुलिस वाले को भेज दिया सब इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर ने राजौरी गार्डन में, और इंसल्ट करने के लिए और तंग करने के लिए वो व्यक्ति आया कि दादा लेखराज कहाँ है। तो बहनों ने कहा बोलो क्या बात है। तो ब्रजमोहन भाई जो है उनके लौकिक पिता आनंद जी उन दोनों जीवित थे, भाई चांस उस दिन वो ऑफिस से जल्दी आए थे, वो भी वही थे। तो वो उन्होंने बात की भाई क्या बात है, तो कहता है कि उनको पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर ने बुलाया। एक पुलिस का आदमी, और उनको पता तो है नहीं, कोई परिचय तो था नहीं, इंस्टीट्यूशन की अभी इतनी प्रतिष्ठा भी नहीं थी, नए नए सेंटर खुले थे, और उसने रिपोर्ट कर दी, उसने भी उस पर एक्शन ले लिया। तो कहता है दादा लेखराज को पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन पर बुलाया, उन्होंने कहा साथ में लेके आना, तो मैं साइकिल ले आया हूँ मेरे पीछे बैठे। तो ऐसा उसने कहा। अब आनंद जी जो थे उसने कहा भाई ये तो बड़ा एक मुसीबत आ गई, अब क्या इसको किया जाए। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं गया हुआ था और दिल्ली में कुछ प्रिंटिंग के वर्क के कनेक्शन में, तो लौट कर सेंटर पर आया हुआ था, तो मुझे तो ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था कोई ऐसी बात होगी। तो उन्होंने फोन किया कि आप जल्दी जल्दी आओ, ऐसा पुलिस वाला आया हुआ है। मैं उसको परसुएट तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं वो क्या एक्शन लेता है, मैं अकेला हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। तो मैं तो वहां गया, लेकिन मेरे जाने से पहले उन्होंने उसको क्या दिया कि भाई वो तो काफी बुजुर्ग हैं, 80 साल के करीब हैं, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, बीमार है वो, और वो तो नहीं जा सकते, इंस्पेक्टर को जाके कहो, उसको टोनी की लाइट पानी पिलाया चाय लिटरेचर दिया, प्यार किया उसको, और उसको आखिर में ये कन्विंस करके भेजा। उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा था साथ में साइकिल पर बिठा कर ही ले। तो उसने उनको कम से कम इस बात के लिए एग्री किया कि भाई उनको जाकर कहो कि उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते, इतना कह दो, अगर फिर वो कहेंगे तो फिर देखेंगे। इसी बीच में उन्होंने मुझे बुलाया, दो चार और को बुलाया कि अभी हम अपना प्लान कर रहे हैं, कल को फिर ये अरेस्ट करे या वो खुद ही आ जाए तो उसका कोई उपाय किया जाए। तो खैर वो लौट गया, तो फिर जाके उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे पहले भी बताया था कि वो आया हुआ है। तो बाबा ने उनको कहा था बात करो उससे, तो फिर उन्होंने बाद में जाके कहा बाबा वो छुट्टी हो गई चला गया। तो बाबा ने कहा बच्चे कैसे गया, क्या बात हुई, क्या कहता था, क्या बात थी। तो उन्होंने कहा मैंने उनको कह दिया कि बाबा मैंने कहा तो ठीक नहीं लेकिन क्या मैंने यही दिया, बाबा बीमार है। बाबा हंसे भी सही और बाबा को बड़ा अजीब सा लगा। बाबा ने कहा बच्चे इस छोटी सी बात के लिए झूठ क्यों बोला, ये कहने की क्या जरूरत थी, हमें इतना आत्मिक बल होना चाहिए उसको ठीक तरह से समझा नहीं सकते, ज्ञान से नहीं उसको समझा सकते, परिचय नहीं दे सकते, और उसको कहते हो बीमार है, वो उठ नहीं सकते, समझा, साइकिल पर चढ़ने की बात तो और रही, वो तो उठ नहीं सकते, और अगर वो मेरे कमरे में आ जाता मैं उठ के बैठा हूं। तो बाबा ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा उसको, ये तो ठीक नहीं कहा। अब आप देखिए कि सच बोलना चाहिए ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारे एक बहुत बड़े आदरणीय जिनके प्रति हमारा जीवन भी कुर्बान है, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं उनको आंच ना लगे, कोई उनको अंगुली भी ना लगाए, उन पर कोई बात ना आए, और हम उसके लिए ये समझते हैं कि चलो जहाँ इतने किए हैं एक भी कर्म और सही मिसाल के तौर पर इसको भी योग से समाप्त कर देंगे जहाँ और करेंगे। या तो बाबा बख्शन आ रहे हैं अपने आप बख्शेंगे क्योंकि उनके लिए हम कर रहे हैं, व्हाटएवर इट मे बी, कोई जस्टिफिकेशन तो मनुष्य के मन में आती है, तो एक बोल डाला चलो एक छोटा छोटा सा है, कोई हार्मलेस है, कोई किसी को हम नुकसान धोखा तो दे नहीं रहे, एक अच्छे काज के लिए, एक नोबल पर्पस के लिए, एक गलत आदमी जिसकी खोपड़ी उल्टी है उसको कोई ठीक बात समझाने के लिए हमने कह दिया मिसाल के तौर पर, लेकिन कहा। और बाबा ने क्या कहा कि बच्चा ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये बोलने की क्या जरूरत थी, हमें आत्मिक बल होना चाहिए। तो लेकिन ये दोनों जो मूल्यों का संघर्ष है, जिन दोनों का, किस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं मान लो न्याय न्याय नहीं हुआ, और न्याय एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है, एक ईश्वरी गुण है, दैवी गुण है, लेकिन कई लोग जब देखते हैं न्याय नहीं हुआ जोश में आ जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि अन्याय तो खराब है लेकिन अत्याचार और क्रोध ये भी खराब है। अगर हम न्याय प्राप्त करने के लिए क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो एक अच्छे बात के लिए फिर हम खराब बात करना चाहते हैं। हमारे सिर्फ एंड भी अच्छे नहीं होने चाहिए, मीन्स भी अच्छे होने चाहिए, लक्ष्य अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा उसको प्राप्त करने का जो तरीका है वो भी दिव्य होना चाहिए। तो ये हमने देखा है कि हम इसमें भी धोखा खा जाते। हमारे कोई एक भाई बहन है हमसे व्यवहार ठीक नहीं करते, हमारे पीछे ही पड़ गए, हमसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या मान लो किसी वजह से कुछ हमारा उनके साथ स्वभाव या संस्कार नहीं मिलता, तो हम अपना जो बाबा ने दैवी गुण बताए हुए हैं कि मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, संतोष, मिलनसार इत्यादि इत्यादि जो दैवी गुण है, उनमें से किसी न किसी दैवी गुण को हम उत्तेजित होकर उसको सीधा करने के लिए, मजा चकाने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, या उसको रोकने के लिए, वट एवर मे बी वर्ड्स वी यूज, तो हमारे स्थिति जो होनी चाहिए अव्यक्त फरिश्ता रूप, या वो जो आर्क वाली मैंने बताई थी, उससे हम नीचे अपने शरीर में आ जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो मूल्य है, एक मूल्य हमारे सामने जरूर होता है, होता दैवी गुण है सामने कि भाई हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, ये इतनी मुद्दत से ज्ञान में है, इतनी मुद्दत से ज्ञान में होने के बाद भी कईयों को परेशान कर रहा है, ठीक नहीं चलता है, तुम लोग नहीं बोलते तो मैं बोलूंगा इसको ठीक करूंगा, तो ये मुझे जिम्मेवारी किसने दी है। बाबा ने कहा डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड्स, अपने हाथ में लॉ आप मत लो, आप लोगों के सामने बाबा कहता है मैं न्यायकारी हूँ, वो मैं बैठा हूँ उसको देखूंगा, आप अपना फर्ज पूरा करो, जो धारणा आपके लिए बताई है उसको करो, वो नहीं करो। तो वो जो हमारी स्थिति जो बाबा कहते हैं बननी चाहिए, उस न बनने का जो एक कारण कई दफा महसूस होता है वो ये है कि उसमें भी देखते हैं हम दूसरों को, लेकिन उनके किसी अवगुण को, आसुरी लक्षण को मिटाने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो तरीका अपना लेते हैं, उस तरीके में अपने किसी देवी गुण का घात कर बैठते, उसको छोड़ बैठते, उससे हम अपनी स्थिति से नीचे आ जाते। और फिर वो जो मैंने बताया उसमें भी होता क्या है, जो पहली बात मैंने चित्र की कही थी, उस व्यक्ति का चित्र हमारी बुद्धि में रहता है कि ये व्यक्ति कैसा है, और वो जो हमारा जो चित्र होना चाहिए वो फरिश्ते रूप का या लाइट आने का जो हम सारे संसार को रेडिएट कर रहे हैं, या वो आर्ब ऑफ लाइट का, वो चित्र हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका आइडिया चेंज होगा तो एक चित्र हट जाएगा, उसकी बजाय वो चित्र भी नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर दोनों में से किसी तरीके का हम पोशाक करें, तो आप चाहे चित्र को कायम रखें चाहे अपने उस वैल्यूज को कायम रखें, तो वो जो स्थिति बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बनी रहेगी। और तीसरी एक बात यह है कि जो हमने कोई कमजोरी खराबी आ जाती है जिसको हमारे बड़े पॉइंट आउट करते हैं, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हम उसको ठीक समझ रहे हैं, लेकिन हमको वो रुकावट पड़ रही है, जो हमारी स्थिति होनी चाहिए वैसी है नहीं, तो उसमें अगर हमें कोई समझाता है या गाइडलाइंस देता है, राइट पाथ सुझाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कई दफा कि रिजिस्ट करते, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते, वो जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई जिसको बहने कहते हैं कि सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम ठीक है, तो वो जो रिजिस्ट करने की कोशिश करते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश हम करते हैं, उससे भी जो हमारी स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति हमारी बन नहीं पाती। अगर हम मान जाएंगे कि हाँ ये खराबी हम में है, तो शायद दूसरा समझेगा कि देखो इसने माना है, कबूल किया है अपनी गलती को, और उससे शायद हमारा आगे के लिए जो इम्प्रेशन है वो खराब हो जाएगा। ये हम नहीं देखते कि हमारा नुकसान वैसे कितना हो रहा है। तो कई दफा हमने देखा है कि हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है अगर हम ये सोचकर चलते हैं कई लोग कि अरे तुम्हें मालूम नहीं ऐसे ही टैक्स से चला जाता है, इस तरह से ही काम होता है, इसके बिना होता नहीं, ये तरीका अख्तियार किया जाता है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, फलां कर रहा है, ये संसार ऐसे ही चलता है, आप तो बिल्कुल एक ऐसी बात करते हो जो असंभव जैसी है, दुनिया में रहना है हमने तो इस तरह से रहा जाता है। तो इस तरह से जस्टिफाई करके, जैसे संसार के लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं, मेडिटेशन तो अच्छा है करना, हम भी चाहते हैं, टाइम नहीं, जस्टिफाई करते हैं अपनी एब्सेंस को, ऐसे ही हम भी जो कोई ना कोई कारण निकाल के जस्टिफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, उसका कोई सिद्ध करने की भी कोशिश करते हैं, उससे जो हमारी वो प्रगति होनी चाहिए वो हो नहीं पा, क्योंकि अभी समय भी हुआ है। तो मैं समाप्त करूंगा कि ये अगर बातें हम ध्यान में रखें और फिर कोशिश करें कि हमारा पुरुषार्थ जो बाबा ने कहा हुआ है, हमें लक्ष्य क्लियर दिया हुआ है, वो चित्र अगर हम सामने रखें कि मैं वो लाइट स्वरूप हूँ, मैं वो परिष्कार रूप हूँ, मैं आर्ब ऑफ लाइट में हूँ, मैं वो बिंदु रूप हूँ जिसके आसपास वो लाइट का आ रहा है, चलते फिरते वो ध्यान हमारा रहे, तो फिर जल्दी हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें। ओम शांति।